परिशिष्ट नौ। 1925 का शांति परिरक्षण कानून, पीस प्रिजर्वेशन लॉ ऑफ 1925। साम्यवादियों और अराजकतावादियों पर नियंत्रण पाने के लिए 12 मई 1925 को जापानी सरकार ने 1925 का शांति संरक्षण कानून पारित किया। वैसे तो वामपंथी अतिवादियों पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकांश राजनीतिज्ञों एवं सरकारी अधिकारियों ने एक कठोर अधिनियम के विचार का समर्थन किया था, लेकिन इस कानून के निर्माण योजना, आलेख तथा लागू करने के पीछे मुख्य बल के रूप में विधि मंत्रालय के हिरानुमा किइचिरो तथा उनके सहयोगी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के पूर्व दो बार संशोधित इस कानून ने जापानी शांति परिरक्षण प्रणाली को वह आधार प्रदान किया जिसके तहत संस्थाओं एवं व्यक्तियों के लिए न केवल विचारधाराओं की सीमाएं तय की गई, बल्कि चिंतन अपराधियों पर काबू पाने की विशेष तकनीकों के स्वरूप का निर्माण भी किया गया। शांति परिरक्षण कानून शाही जापान द्वारा बनाए गए अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनों में एक था। इस कानून के दो मुख्य उद्देश्य थे। नैतिक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत जापानी जीवन प्रणाली को निरंतर बदलाव की दशा में बनाए रखना, तथा राजनैतिक उद्देश्य, जिसकी मदद से विघटनकारी तत्वों का दमन करना। मंचूरियाई घटना 1931 के बाद असहमति को आम तौर पर विद्रोह का नाम दिया जाने लगा, तथा अधिकारी वर्ग अधिक से अधिक वफादारी, अनुशासन एवं आज्ञा पालन की मांग करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के समय तक तो शांति परिरक्षण कानून के विषय क्षेत्र को इतना विस्तृत रूप प्रदान कर दिया गया था कि इसके प्रावधानों के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवादियों को भी दंडित किया जाने लगा। राष्ट्र की राजनैतिक अस्वस्थता को दूर करने के प्रयास में 1922 से 24 के दौरान तीन मंत्रिमंडलों के असफल हो जाने के बाद कातो ताकाआकी के नेतृत्व में एक वामपंथी विरोधी नवीन मंत्रिमंडल बना। इस मंत्रिमंडल ने शांति संरक्षण कानून को उच्च प्राथमिकता दी तथा 19 फरवरी 1925 को प्रतिनिधि सदन में शांति कानून, पीस लॉ का विधेयक प्रस्तुत किया। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। अनुच्छेद 1, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने सरकार के स्वरूप को बदलने या निजी संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत की अवहेलना करने के उद्देश्य से किसी संस्था का निर्माण किया या फिर ऐसी संस्था के उद्देश्यों को जानते हुए कोई व्यक्ति उसका सदस्य बनता है, उसे कठोर श्रम सहित या उसके बिना 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इस अनुच्छेद के तहत किए गए अपराध के प्रयास पर भी सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 2, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद 1 के पैरा 1 में उल्लिखित मामलों पर अमल करने की चर्चा करेगा, उसे कठोर श्रम सहित या उसके बिना 7 वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 3, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद 1 के पैरा 1 में उल्लिखित मामलों पर अमल करने के लिए किसी को भड़काएगा, उसे कठोर श्रम सहित या उसके बिना 7 वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 4, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को दंगा या अवमानना या अन्य अपराध जिसमें जान या माल की क्षति हो सकती है, अनुच्छेद 1 पैरा 1 में उल्लिखित अपराधों को करने के उद्देश्य से भड़काता है, उसे कठोर श्रम सहित या फिर उसके बिना 10 वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 5, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद 1 पैरा 1 तथा ऊपरी 3 अनुच्छेदों में उल्लिखित अपराधों को करने के लिए धन, वस्तु या कोई अन्य आर्थिक प्रलोभन देता है या करने का प्रस्ताव पेश करता है या उसके लिए कोई समझौता करता है, उसे कठोर श्रम सहित या उसके बिना 5 वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है। यदि कोई जानबूझकर ऐसा कार्य करने के लिए धन प्राप्त करता है, उसकी मांग करता है या उस कार्य के लिए वादा करता है, उसे भी इसी प्रकार से दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 6, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने ऊपर के 5 अनुच्छेदों में वर्णित अपराध किए हो, आत्मसमर्पण करने पर सजा में रियायत या फिर सर्व क्षमा दी जाएगी। अनुच्छेद 7, यह कानून उन सभी लोगों पर लागू होगा जो इसका उल्लंघन करेंगे, भले ही वे इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर ही क्यों न हो। हालांकि इस कानून के पारित होने से पहले इसकी शब्दावली पर समिति में लंबी बहस हुई, पर प्रतिनिधि सभा की तरफ से इसका आम तौर पर स्वागत किया गया। बिल भारी बहुमत से पारित हुआ। ऊपरी सदन ने भी इसे बिना किसी आपत्ति के पारित कर दिया। दूसरे शब्दों में इस कानून के पारित होने के विरुद्ध कोई विशेष विरोध व्यक्त नहीं हुआ। नए कानून को सन 1925 की समाप्ति से पहले ही लागू कर दिया गया। 16 दिसंबर 1925 को पहली बार सरकार ने इस कानून के अंतर्गत 38 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया। ये विद्यार्थी गाकुरेन अथवा सामाजिक विज्ञान छात्र संघ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ सोशल साइंस के सदस्य थे, जिन्होंने मार्क्सवाद, लेनिनवाद को समर्थन देने की शपथ ली थी। न्यायालय ने अभियोजन के कथन को कि सरकार का तख्ता पलटने का षड्यंत्र 1925 के संरक्षण कानून के तहत एक अपराध था, वैध ठहराया। इस प्रकार एक वैधानिक परंपरा कायम हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इस कानून को राज्य विरोधी पर्चे बांटने या राज्य विरोधी कार्यकलापों की योजना पर विचार करने जैसे कार्यों पर लागू कर दिया गया। 1 जनवरी 1927 को चिंतन अपराधियों, थॉट क्रिमिनल्स को दंडित करने के लिए अलग से चिंतन विभाग की स्थापना की प्रस्तावना की गई तथा मई 1927 के मध्य तक यह विभाग काम करने लगा। 15 मार्च 1928 को जापानी साम्यवादी दल, जापान कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 1600 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस दल से पकड़े गए दस्तावेजों को आधार बनाकर साम्यवाद विरोधी तनाका गीची सरकार ने शांति कानून का एक आपातकालीन शाही अध्यादेश, जिसे बाद में डायट ने पारित कर दिया, के द्वारा संशोधन कर दिया। अब गुटों के संगठकों तथा नेताओं को मृत्युदंड दिए जाने तथा गैर सदस्यों को अवैध गुटों की मदद करने के लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया। अब विद्यार्थियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए शिक्षा मंत्रालय में छात्र खंड की स्थापना की गई। अवैध संस्थाओं का पता लगाने के लिए छात्र परामर्शदाताओं के रूप में विद्यालयों में जासूसों की नियुक्ति की गई। गृह मंत्रालय के अंतर्गत चिंतन पुलिस का गठन किया गया, जिसके सदस्यों ने न केवल देश के अंदर बल्कि बाहर भी राष्ट्र विरोधी तत्वों का ब्यौरा एकत्रित करना आरंभ किया। न्याय मंत्रालय के अधीन चिंतन अभियोग निरीक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनका कार्य चिंतन अपराधियों का पता लगाना तथा उन्हें चिंतन अपराधों के लिए दंडित करना था। सरकार आमतौर पर अपराधियों को सजा देने की बजाय उनके शुद्धिकरण पर ज़्यादा जोर देती थी। ऐसी संस्थाओं की स्थापना की गई जो अपराधियों के शुद्धिकरण का कार्य करती थी। प्रत्येक शुद्ध किए गए व्यक्ति का समाज में वापस स्वागत किया जाता था और शुद्धिकरण की विधि से गिरफ्तारी, अभियोग एवं सजा से जुड़ी बदनामी भी समाप्त हो जाती थी। फरवरी 1941 में प्रतिनिधि सभा में शांति कानून को दूसरी बार संशोधन के लिए पेश किया गया। इसमें कुल 65 अनुच्छेद थे और यह असल में संशोधन की बजाय एक नए कानून की रूपरेखा थी। इसे 15 मार्च 1941 को लागू किया गया। अब चिंतन अभियोग निरीक्षकों को विस्तृत अधिकार दिए गए। बचाव पक्ष के वकीलों का तथा चयन न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाने लगा। अपील न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया तथा विभिन्न प्रकार के नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 1928 और 1941 के बीच लगभग 60,000 व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए। इस कानून को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद 15 अक्टूबर 1945 को समाप्त कर दिया गया।